ये आकाशवाणी दिल्ली है। संसद भवन में विरोध प्रदर्शन में धक्का मुक्की में दो सांसदों के घायल होने पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य चुनाव समिति की घोषणा की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अधिकारियों पर घोटाले का आरोप लगाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस संग्रहालय विकास के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए और दिल्ली सरकार के निजी स्कूलों में 2025-26 सत्र के लिए नर्सरी केजी और कक्षा एक में प्रवेश प्रक्रिया का कल अंतिम दिन है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं दिव्या तोमर। भारतीय जनता पार्टी ने संसद भवन में विरोध प्रदर्शन के दौरान मारपीट के कारण पार्टी के दो सांसदों के घायल होने के बारे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने बताया कि दिल्ली के संसद मार्ग थाने में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में उन्होंने संसद के बाहर आज हुई घटना का विस्तार से जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब एनडीए के सांसद शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे।
उनके द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए हमने सेक्शन 109, 115, सेक्शन 117, सेक्शन 125, सेक्शन 131 और सेक्शन 351 के अंतर्गत उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है। राहुल गांधी जी ने दल बल का प्रयोग किया, अपने साथी सांसदों को उकसाया, जिसके कारण गंभीर चोटें दो सांसदों को लगी है। और जिस तरह का दुर्व्यवहार उन्होंने किया, एक महिला सांसद जो नागालैंड से आती है प्रण कौन्याक जी, वो राहुल गांधी जी के महिलाओं के प्रति रवैये को लेकर भी दिखाता है।
उधर कांग्रेस सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भी थाने पहुंचा और भाजपा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बताया कि इस घटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गिर गए और उनके दोनों घुटनों में चोट आई। श्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि ये डॉक्टर बीआर अंबेडकर के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश है।
कि ये सारा का सारा आज हुआ है, ये सुनियोजित ढंग से देश में जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ के वक्तव्य थे, उसका जन आंदोलन जो बन चुका है, उसको काउंटर करने के लिए आज ये सब इन्होंने नौटंकी की है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय से हुए संवाददाता सम्मेलन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भाजपा के दो सांसदों को घायल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये एक अशोभनीय कृत्य था जिसे सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता।
हम सोच रहे थे कि वो संसद में उनके द्वारा किए गए कुकृत्य की पाप की क्षमा मांगेंगे, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मांगी। आज मेरा मन भारी है, व्यथित है, पीड़ा से भरा हुआ है। मैंने विधानसभा में भी और संसद में भी, चाहे माननीय सांसदगण हो या विधायकगण, उनके आचरण को देखा है, उनके व्यवहार को देखा है, लेकिन आज जो कुछ संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशालीन, अशोभनीय, उदंड और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार जिसकी सभ्य समाज कल्पना नहीं कर सकता।
श्री चौहान ने कहा कि महिला सांसद फांगनोन कुन्याक के साथ अनुचित व्यवहार किया गया और उन्होंने इसकी शिकायत राज्यसभा के सभापति से की है। इससे पहले संसद भवन परिसर में प्रदर्शन और जवाबी विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत घायल हो गए। मीडिया से बातचीत में श्री सारंगी ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, जिसके कारण वो सांसद उन पर गिर पड़े और वे घायल हो गए। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायल सांसदों से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस घटना की निंदा की है।
पार्लियामेंट के परिसर में एमपी अपना अपना विचार लेकर के प्रदर्शन करते आए हैं, अपना अपना बात रखने का अधिकार होता है। कौन सा कानून राहुल गांधी को वो ताकत दिया है कि वो आकर के दूसरे एमपी को धक्के मार करके चोट पहुंचाने का? मैं अभी सीधा सीधा राहुल गांधी को सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा?
इस बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब वे संसद के भीतर जाने का प्रयास कर रहे थे तब भाजपा के सांसद ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें धक्का दिया गया और धमकाया भी गया। श्री गांधी ने कहा कि प्रवेश द्वार से सदन के भीतर जाने का उनका अधिकार है।
धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं।
दिल्ली नगर निगम के सदन की आज बैठक हुई। इस दौरान सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉ भीमराव आम्बेडकर पर दिए गए बयान को लेकर सदन में हंगामा किया। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल के पार्षदों ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में अवैध प्रवासियों को बसाने के मुद्दे पर पार्टी को घेरा। सत्ता पक्ष विपक्ष के हंगामे के कारण एक बार सदन की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राज्य चुनाव समिति की घोषणा की है। इस समिति में भाजपा सांसद मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज, अरविंदर सिंह लवली और वीरेंद्र सचदेवा जैसे 21 प्रमुख सदस्य शामिल हैं। बैजयंत पांडा, अतुल गर्ग और डॉ अलका गुर्जर को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड DUSIB के अधिकारियों पर घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हर विभाग में भ्रष्टाचार कर रही है। श्री सचदेवा ने DUSIB की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बोर्ड का मुख्य उद्देश्य गरीबों की संपत्तियों की देखभाल और बेघर लोगों को आश्रय देना है, लेकिन ये विभाग इसमें असफल रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक पवित्र मानवता सेवा कार्य है, पर दिल्ली सरकार ने अधिकारी और उनके विधायकों की मिलीभगत से इसमें एक बड़ा घोटाला चल रहा है।
दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, इसका काम है गरीब असहाय लोगों को और शेल्टर होम में जिनके पास अपना मकान नहीं है उनको रहने का प्रबंध करना। तो एक नया कारनामा ये आया है, एक शेल्टर होम जिसमें 6 लोग होने चाहिए, 24 घंटे में सिर्फ 2 लोग होते हैं, 4 लोग होते ही नहीं है, लेकिन जिन NGOs को ये काम दिया गया है वो तनख्वाह दिल्ली सरकार से 6 लोगों की लेती है, काम 2 लोग कर रहे हैं, वो 4 भूत कौन से हैं उसका कोई अता पता नहीं।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण कालिंदी कुंज जंक्शन पर यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य समेत आगरा कैनाल सड़क पर एक पुल बनने का काम अगले कुछ महीनों तक जारी रहने की उम्मीद है। यातायात पुलिस ने नोएडा से दिल्ली जाने वालों को DND फ्लाईओवर का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। पुलिस ने फरीदाबाद से नोएडा जाने वाले यात्रियों को मथुरा रोड और रोड नंबर 13 का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। भारत ने युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को वैश्विक सांस्कृतिक उपलब्धि के रूप में स्थापित करने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। ये महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का अभिन्न अंग है। ये परियोजना नई दिल्ली के प्रतिष्ठित उत्तर और दक्षिण ब्लॉक में लगभग 1,55,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस संग्रहालय विकास के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर की स्थिति पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक युद्ध के बदलते तरीकों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
जाहिर सी बात है कि जब पूरी दुनिया बदल रही है तो डिफेंस सेक्टर भी इस बदलाव से अछूता नहीं रह सकता है। जहां तक भारत की बात है, कुछ ऐतिहासिक कारणों से हम आधुनिक हथियारों के मामले में और डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ हद तक पीछे रह गए थे, लेकिन अब स्थितियां तेजी से बदल गई हैं। भारत बेहद तेज गति से डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंस की ओर अपने कदम आगे बढ़ा चुका है।
श्री सिंह ने कहा कि देश उन हथियारों का निर्यात कर रहा है जिनका वो कभी आयात करता था। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र बढ़ते हुए क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। देश की बढ़ती स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं और उभरते बाजार अवसरों के कारण इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में वार्षिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुश्री पटेल ने कहा कि चिकित्सा उपकरण क्षेत्र लगभग 14 अरब होने का अनुमान है और 2030 तक इसके 30 अरब डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि देश की बड़ी जनसंख्या का लाभ उठाने, नवाचार को बढ़ावा देने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निवेश आवश्यक है। नई दिल्ली में वार्षिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत के स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता, सुलभ और समावेशी बनाना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण घटक साबित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के निजी स्कूलों में 2025-26 सत्र के लिए नर्सरी, केजी और कक्षा एक में प्रवेश प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर है। 28 नवंबर को शुरू हुई इस आवेदन प्रक्रिया का कल आखिरी दिन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक कई स्कूलों में सीटों से कई गुना अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।
अभिभावक कल तक ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय ने नवंबर में दाखिले की प्रक्रिया की घोषणा की थी। शिक्षा निदेशालय के शेड्यूल के अनुसार आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद सभी स्कूल 3 जनवरी को आवेदन करने वाले बच्चों की सूची को वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। 10 जनवरी को किस बच्चे को किस मानक में कितने अंक मिले इसकी सूची जारी की जाएगी। विभाग दाखिले के लिए चयनित बच्चों की पहली सूची 17 जनवरी को जारी करेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
आज दिल्ली के डॉक्टर बी आर आम्बेडकर स्कूल का कैम्ब्रिज के मेयर सीएलआर बैजू थिट्टाला ने दौरा किया। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर श्री भारद्वाज ने कहा कि इस दौरे ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक मंच पर भी सरकार की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर किया है। मेयर ने स्कूल में अपनाए जा रहे शिक्षण तरीकों को देखा।
We thank the mayor of Cambridge for coming here to our school of Delhi Government, and we are very delighted to know that we have a mayor of Indian origin at Cambridge after centuries, and we are very thankful that he came here, and we are delighted to host him here.
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए श्री सक्सेना ने कहा कि भाग्यशाली वो हैं जिन्हें अवसर मिलता है। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आज शाम 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 444 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 को पार कर गया है। दिल्ली में ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि दोपहर के समय हल्की धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद भवन में विरोध प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की में 2 सांसदों के घायल होने के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राज्य चुनाव समिति की घोषणा की। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अधिकारियों पर घोटाले का आरोप लगाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय और फ्रांस संग्रहालय विकास के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए। और दिल्ली सरकार के निजी स्कूलों में 2025-26 सत्र के लिए नर्सरी, केजी और कक्षा एक में प्रवेश प्रक्रिया का कल अंतिम दिन है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।